नमस्कार, मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ कलाकार भाई बहनें उपस्थित हैं। एक कलाकार जो होता है वो अपने कला के जरिए भगवान के बहुत करीब होते हैं, तो ये आध्यात्मिक रास्ता उनको क्या अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने में मदद कर सकती है, क्या इनको एक बेहतर कलाकार बना सकती है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे पास उपस्थित है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमलेश दीदी, जो कि करीब 50 सालों से इसी काम में लगी हुई है, अपनी योग साधना कर रही है, लोगों को योग सिखा रही है और उसके साथ लोगों को सही मार्गदर्शन कराने के कार्य भी कर रही है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दीदी नमस्कार।
नमस्कार,
आपको हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दीदी, हम जब कलाकार की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं कि जैसे एक भगवान की तरह उसको मानते हैं, उसके जरिए वो भगवान के करीब ऐसे भी वो रहते हैं और उसके साथ, लेकिन उनको संसार में भी, परिवार में, अपना जॉब में, बहुत सारा उसमें भी उनको इन्वॉल्व रहना पड़ता है। हर जगह उनका रिक्वायरमेंट, उनके लिए डिमांड बहुत ज्यादा होता है। तो फिर इस जगह में आप किस तरह से आध्यात्मिक रास्ता उनको किस तरह से मदद कर सकती है ताकि ये दोनों चीज को बैलेंस कर सके।
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पधारे हुए सभी कलाकार और सांस्कृत भाई बहनों को हार्दिक स्वागत है। कलाकार का मतलब ही है कि अपनी कला को आने वाले कल में आकार देना, अर्थात भविष्य बनाना। कलाकार को अपनी विशेषता और कला को यही समझना चाहिए कि प्रभु का प्रसाद है, प्रभु की देन है। तो प्रसाद प्राप्त करने से कभी अभिमान नहीं होता है। ऐसा सोचेगा तो उसकी कला और विशेषता का उसे कभी भी अभिमान नहीं आएगा, बल्कि उसका ये भावना रहेगा कि मैं अपनी कला और विशेषताओं को दूसरों को भी दूं। लेकिन देखा ये जाता है कि आजकल जो कला है वो बजाए, जैसे कलाकार को मनोरंजन भी कहा जाता है। मनोरंजन का मतलब है मन को आनंदित करना, लेकिन ऐसी कला होती है जो मन आनंदित होने के बजाय और ही विकृत हो जाता है। वो अपनी कलाओं में जैसे अंग प्रदर्शन है या कोई भी गलत चीजें दिखाता है तो उससे मनुष्य का मन विचलित हो जाता है। एक समय था जब देवताओं के चित्र थे तो उनके आगे मनुष्य का मस्तक झुक जाता था, लेकिन आज तो कलाकार अपनी कला में ऐसा देवताओं के चित्र में भी ऐसा प्रदर्शन कर देते हैं अश्लील, जो देखने में मन प्रफुल्लित की जगह और विकृत हो जाता है और कलाओं में उनका कुछ स्वार्थ भी आ जाता है और कला एक कलंकित रूप से हो गई है। परंतु वास्तव में कलाकार का मतलब ही है कि अपनी कला से, संस्कृत से दुनिया को जगाना, जागृति देना, लोगों के अंदर बहुत गुण विशेषताएं भरना और वो आपकी भी वाह वाह करें। कहते हैं एक प्रख्यात कवि ने, विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि ये सृष्टि भी एक मंच है जहां पर हरेक मनुष्य अपना अपना अभिनय करते हैं। कोई कुछ अभिनय करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन अभिनय करते हुए उसे अपने आप को भूलना नहीं चाहिए। और वो एक एक्टर होते हुए भी उसको ये नहीं मालूम है कि इस सृष्टि मंच का डायरेक्टर कौन है, क्रिएटर कौन है, मुख्य एक्टर कौन है, हीरो हीरोइन कौन है, वो ये नहीं जानता है। और हरेक नर नारी अपना शरीर रूपी वस्त्र पहनकर यहाँ पर पार्ट प्ले करती है। अब आप ये विचार करिए कि कोई रावण का पार्ट बजा रहा है, और पाठ बजाते बजाते वो अपने असली स्वरूप को भूल जाए, अपने नाम को भूल जाए और वो यही कहने लगे मैं एक रावण हूँ रावण हूँ, तो बड़ी भूल हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार हम शरीर धारण करके शरीर रूपी वस्त्र पहनकर नर और नारी यहाँ पर अभिनय करते हैं, पर वो अपने आप को ये भूले हुए हैं कि मेरा असली रूप क्या है। और ये शरीर तो मेरा वस्त्र है, लेकिन इस वस्त्र के अंदर भी रहने वाली जो चीज है वो क्या है, उसका असली घर कहाँ है और वो कैसे अपने अभिनय को इतना सुंदर करे जो जो भी देखे वो वंस मोर करे, वाह वाह करे। एक एक्टर जब मंच पे आता है हमेशा यही सोचता है कि मुझे सब एक है वंस मोर वाह वाह, ताली पीट कर ये नहीं कहें कि इसको हटाया जाए जल्दी। तो हम भी अगर ये सोचें कि हर एक व्यक्ति नर नारी वस्त्र भले ही हमने किसी ने नारी का लिया किसी ने नर का, लेकिन अभिनय करने वाले एक एक्टर है और उसके विषय में उनको ये सारा ज्ञान मालूम होना चाहिए कि मैं रियली में वो एक्टर हूँ वो क्या चीज है, तब वो अपनी कलाओं में इतना सुंदरता ला सकता है कि आज जो मनुष्य के अंदर आप देखिए कोई भी चीज होती है, गणेश की पूजा होती है कोई होती है, लेकिन आप खुद देखते हैं दुनिया के अंदर उसको सब उल्टा रूप दे दिया गया है, वहां भी गंदगी नाच डाना गाना और इतना खराबी जिसको देखने में जो अच्छे लोग होंगे वो तो आंखें बंद कर लेते हैं। तो कलाकार का मतलब ही है कि अपना भविष्य बनाना, दूसरों को अपने आकार को अच्छी तरह प्रकट करना और अपनी संस्कृति को ऐसे लोगों के पास पहुंचाना जिससे उनको सुख मिले और सचमुच आनंद मिले। तो इसके विषय में हमारा ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर ये भी एक विभाग है जहाँ अनेक कलाकार और संस्कृत वाली भाई बहने ईश्वरी विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करती है। हमारे 17 विभाग में ये एक विभाग है।
दीदी इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कलाकार जीवन के अर्थ समझ जाए तो फिर वो बेहतर कलाकार बन सकता है कि नहीं दीदी? और ये जीवन के अर्थ समझने के लिए उसको आध्यात्मिक रास्ता में जाना ही पड़ेगा।
जरूर
बिल्कुल। तो अभी दीदी क्वेश्चन हम लेना शुरू करें। आज हमारा पहला क्वेश्चन पूछेंगी सौदामिनी त्रिपाठी।
जब एक कलाकार अपने आपको सौखिन कलाकार के रूप में वो समाज में कुछ कला का प्रदर्शन करती है वो करता है तो उस टाइम में वो भगवान को उपलब्ध करता है अपने अंदर में, लेकिन उसको जब मान्यता नहीं मिलता है तो कला को छोड़ देगा?
नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कला छोड़ देगा, लेकिन वो जिस समय कला दिखाती है उस समय एक दो मिनट के लिए भगवान को याद करती है, परंतु उसकी धारणा ऐसी होनी चाहिए कि ये कला भी प्रभु की देन है, वरदान में दिया है, तो मैं हर वक्त प्रभु को साथ रख के अपनी कला का प्रदर्शन करूं। तो वो कोई प्रदर्शन करते टाइम अपना सो या मान्यता की इच्छा नहीं रखेगी। जब आप प्रभु को साथी बनाएंगे तो स्वाभाविकली आपको मान्यता प्राप्त होगी, लेकिन अगर हमने अपनी कला को गलत रीति से दूसरों के आगे पेश किया तो आपको मान्यता शायद नहीं मिल सकती है। इसमें आपका देखभाल करने वाला, आपको मान्यता दिलाने वाला परमात्मा है, उसने आपको कला दी है लेकिन कला का गलत प्रदर्शन करने के लिए नहीं दिया है। अगर हम श्रेष्ठ प्रदर्शन करें अच्छा करें तो वही लोगों के द्वारा आपको मान्यता प्रदान कराएगा, ये उसके ऊपर है।
विश्वास तो रखना ही चाहिए,
विश्वास रखना चाहिए,
भगवान के ऊपर विश्वास हमेशा रखना चाहिए।
जरूर।
अभी हमारे पास और एक क्वेश्चन है जो पूछेंगे निमाई पटनायक जी।
इन दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एवरीबॉडी इज सर्चिंग फॉर पीस, सो हाउ विल गेट इट इन आवर डे टू डे लाइफ? सेकंड थिंग इज इन आवर ओम शांति भवन, भाई बहन सब बोलते हैं ओम शांति
दीदी उनका प्रश्न ये है कि जैसे अभी हम लोग सांसारिक जीवन बिताते हैं तो उसमें शांति की बहुत अभाव है, तो वो कहाँ से और कैसे हमको मिल पाएगा। और दूसरा प्रश्न ये है कि यहाँ पर सब लोग ओम शांति बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं, उसका अर्थ क्या है?
हर एक व्यक्ति आज संसार में ना एक ग्रस्त ना सामाजिक व्यक्ति, लेकिन दुनिया का हर व्यक्ति शांति चाहता है, क्योंकि उसके पास भौतिक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, हर प्रकार से वो भौतिकता में संपन्न है, मोटर गाड़ी मकान महल सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है। तो मन की शांति के लिए वो भगवान के पास जाता है, मंदिरों में भटकता है, तीर्थों पर जाता है, परंतु वास्तव में शांति का सागर एक ही परमात्मा है, जिसको कहते हैं गॉड इज वन। तो वो वन जो है उसकी आपको प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए मन की शांति से आप वंचित हैं। जब आप जो गॉड इज वन है उसका एड्रेस क्या है, वो कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, कैसे हम उससे अपने माइंड को कंसंट्रेशन करें, ऐसी विद्या लें जिससे हम उससे संबंध जोड़ें, जब ये सब बातें आपके पास आ जाएंगी तो आप मन की शांति के लिए कहीं भटकेंगे नहीं, किसी को मांगेंगे नहीं, पहले आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। शांति कोई मार्केट में नहीं मिलती है, ना किसी साधु संत महात्मा के पास मिलेगी, लेकिन शांति मिलेगी आपसे परमात्मा से, और परमात्मा एक ही है संसार का पिता, उससे आपको कनेक्शन करना है, तो आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलिए और ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर आकर 7 दिन उस परमात्मा का यथार्थ परिचय ले लीजिए। जब उसका परिचय मिल जाएगा तो आप जहां भी बैठे होंगे उससे आप कनेक्शन अपना जोड़ सकेंगे और शांति का अनुभव कर सकेंगे। रहा ओम शांति की बात, दुनिया में क्या कहते हैं, ओम नमो शिवाय, माने उसका अर्थ ही वो नहीं समझते, वो सोचते हैं मैं ही भगवान हूं, हम ही ओम नमो शिवाय, माने मैं ही सिर्फ शिव ही मैं। लेकिन वास्तव में जैसे संसार के अंदर आप किसी से मिलते हैं तो आपस में क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें परमपिता परमात्मा ने ओम शांति सिखाया है, क्योंकि ओम का असली अर्थ है अपने आत्मा को याद करना। ओम माने मैं आत्मा। अगर मैं आपसे मिलती हूँ तो आत्मिक स्थिति में रहकर और आपको जब बात करूंगी या आपसे कुछ सुनूंगी तो आपको शांति दे सकूंगी, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांत। और जब मैं दैहिक रूप में रहूंगी और दैहिक रूप से बात करूंगी तो आपको शांति की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए यहाँ ईश्वरी विश्वविद्यालय में यही मंत्र है कि जब आपस में आप मिलो तो एक दो को नमस्ते की बजाय ओम शांति करो, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और आप भी शांत स्वरूप स्थिति में रहकर आत्मिक स्थिति में रह के बात करिए। ये शरीर तो आपका वस्त्र है, रंग बिरंग पहनता है कोई कैसा कोई कैसा, इस वस्त्र से जब जो बोलने वाली पावर है वो निकल जाती है। आप ये तो नहीं कहते कि मैं सिर मैं हाथ, कहते माई हाथ मेरा सिर, माने एक हुआ आई एक हुआ माई। तो जब आई का आपको पता लग जाएगा तो आई कैसी है, आत्मा शांत स्वरूप। इसलिए हम सब आपस में मिलते हैं तो यही कहते हैं ओम शांति।
ये बहुत सुंदर। अभी हम और एक क्वेश्चन लेंगे जो पूछेंगे वैशाली पटनायक।
मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि लाइफ का एसेंस क्या है, मतलब हमारा जीवन हमें जो दान दिया गया उसका अर्थ क्या है। और साइमल्टेनियसली सेकेंड सवाल मेरा आता है, एक 82 साल का आदमी अपना जीवन पूरा तरीके से जी सकता है, एक छोटा सा बच्चा जो 2 साल का हो कि 6 महीने का हो, उसका मृत्यु क्यों इतनी जल्दी हो जाता है?
लाइफ का मतलब ही है कि हम ऐसा अपने जीवन को बनाए जो सब देखकर आपके जीवन से सुख और शांति ले। ऐसा नहीं कि जो आपको देखते ही वो भाग जाए और डर जाए, तो हमारा जीवन ऐसा आदर्श बने, चाहे वो कलाकार है, चाहे सांस्कृतिक रूप में है, चाहे कोई पाठ बजाता है, चाहे कोई भी विभाग का है, पर इसका जीवन इतना सुंदर होना चाहिए जो आपसे मिले वो खुश हो जाए और संतुष्ट हो जाए। इसलिए कहा जाता है आप सभी को खुशियों का उपहार देते जाओ, वो सबसे बड़ा उपहार है। आप किसी को धन दो या ना दो, मेहनत किसी को करो ना करो, सेवा शरीर से करो ना करो, लेकिन अपनी दृष्टि से, अपने पॉजिटिव थिंक से, अपनी भावनाओं से दूसरों के लिए कल्याण की भावना और शांति की भावना और खुशी की भावनाएं देते जाओ, तो आप अनुभव करेंगे कि ऐसी लाइफ के पीछे सब भागते हैं। आप भले ही एक जगह बैठे होंगे लेकिन आपके पास हजारों लोग मिलने आएंगे, आपको छुएंगे, क्योंकि आपको देखने से, आपको मिलने से मुझे खुशी महसूस होती है, मुझे शांति मिलती है। ऐसी हमारी लाइफ होनी चाहिए, जिसको ही कहते हैं आदर्श लाइफ। वो जब होगी जबकि आपके जीवन के अंदर कुछ मूल्य होंगे। मूल्य रहित जीवन तो कोई मायने नहीं रखता है। अगर अहंकार है तो कोई आपके पास नहीं जाएगा। आप देखिए एक वृक्ष है, जितना बड़ा होता है वो उतना झुका होता है और जितना सीधा होता है वो खड़ा रहता है। कहते हैं बड़े हुए से क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, राही को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। तो हमें अपनी लाइफ को, हम चाहे किसी भी विभाग में मेंटेनेंस करती है, इतना सुंदर, इतना अच्छा बनाना चाहिए, इतना नम्रचित, इतना संतोष, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष आलस्य नफरत, ये सब अशांति देते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी।
दीदी क्या ये संभव है कि हम हर किसी को अपने गुणों से खुश कर सकते हैं?
कर सकते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, एक बोल में मधुरता है, वो भी एक बहुत बड़ा गुण है। बोल से आप अपने व्यक्तित्व को दे सकते हो, दूसरे को पहचान हो सकती है, और बोल से मनुष्य ऐसी मीठी वाणी बोलता है जो मनुष्य को राजाई के तख्त पर बिठा सकता है, और ऐसा कड़वा भी बोलता है जो फांसी पर लटका सकता है, जिससे बात करने की कभी इच्छा ही नहीं होगी। और एक ऐसा व्यक्ति है जिससे बात करने के लिए टाइम मांगते रहेंगे, चांस खोजते रहेंगे, हमें थोड़ा मिलना है, मिला दो। तो मधुरता भी एक इतना सुंदर गुण है जो बात मत पूछो। फिर अपने जीवन में सदा हर्षित रहो, मुस्कुराते रहो, हार हो या जीत हो, ये दुनिया तो हार जीत का खेल है, या गेम है, खेल है। खेल में ये नहीं, हम जीत गए तो खूब मुस्कुरा रहे हैं, हार गए तो रोने लगे। जो जीत में मुस्कुराता है वो भी एक जिंदगी है, लेकिन हार में भी जो मुस्कुराता है वो उससे भी बड़ी जिंदगी है। तो हमारी लाइफ का मतलब ये है कि हम औरों के लिए जिए पर उपकार का काम करें। दूसरा का क्वेश्चन ये है कि वो सही है जो 2 वर्ष का बच्चा, उसने कुछ पाप नहीं किया लेकिन वो मर जाता है, या कई आपने देखा हुआ 2 साल के बच्चे की हड्डी टूट जाती है, उसने तो कुछ खराब काम नहीं किया, वो उसके पूर्व जन्मों का संस्कार होता है। क्योंकि हमारा आत्मा जो एक्टर है, अभिनय करती है, वो जन्म मरण के चक्र में आती है। जब जन्म मरण के चक्र में आती है तो जो आपका पूर्व जन्म का उसका हिसाब किताब बाकी रह गया और जल्दी शरीर छोड़ दिया, वो इस जन्म में जन्म लेते ही वो भोग लेगा उसको, या जीवन के अंत तक भोग लेगा। और कितने लोग हैं नदी के किनारे रहते हुए भी, बाढ़ में डूबते हुए भी मरते नहीं है, और कितने लोग हैं डूब भी नहीं पाते हैं, अंदर जाते भी नहीं है, और थोड़ा सा पानी आया मर जाते हैं, वो भी उनके उनके कर्मों का हिसाब किताब है। और अभी भी वो जो लेके गए हैं दूसरे जन्म में जाते कहीं नहीं है, अभी ने उनको यही करना है। उसका पार्ट ये है एक्टर का कि एक शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ना और दूसरा शरीर रूपी वस्त्र को धारण करना और सृष्टि मंच पर पार्ट प्ले करते रहना।
दीदी जो बच्चा है 2 साल में डेथ हो गया जो बच्चा का, तो इसका मतलब है कि उसका पहले जन्म का कर्म उसका खत्म हो गया, यहाँ पर
चुप्त हो गया। हाँ, तो फिर जाके दूसरा जन्म लेगा,
तो किस
दूसरे के जन्म में बैठेगा।
दीदी एक चीज, हम लोग अपना लाइफ पूरा लीड करते हैं, सब अच्छी तरह चल रहा है, 20 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक, सडनली आप मतलब कभी दुख का कभी हुए भागीदार हुए ही नहीं।
हाँ।
पर आस्ते आस्ते जब हमने खराब काम किया तब भी हमारे साथ अच्छा हो रहा था, गलत काम करते गए करते गए करते गए 40 तक पहुंचे। जब एक झटका लगा जीवन में तब पता चला भगवान का अर्थ क्या है।
हाँ।
जब आदमी गिरता है तब भगवान याद आता है, पर जब तक याद आता है आदमी तो इतना कुकर्म कर जाता है कि वो भोगते भोगते दूसरे जन्म को चले जाता है।
इसीलिए तो जो आध्यात्मिकता है वो लोगों को जगाती है।
हाँ।
कि आज ही जागो, आप ये मत सोचो हम बूढ़े होंगे तब कर लेंगे। जब वंश गिरेंगे या कोई भी प्रकार से डिस्ट्रक्शन होगा तो ये साउंड नहीं होगा कि बूढ़े बूढ़े इसके अंदर आ जाओ और जवान और बच्चे हट जाओ। इसलिए बचपन से माता पिता ये शिक्षा देती है कि तुम अच्छी लाइन में जाओ, आध्यात्मिक कार्य करो। ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर भी 5 साल के बच्चों से लेके 55 साल के बच्चों तक, बूढ़े बच्चे जवान सबको ये बात बताई जाती है, क्योंकि समय का कुछ ठिकाना नहीं है। पाप का घड़ा जब भर गया, अंत हो गया, तो आपने अनुभव किया तो उसका भी समय आता है। भले ही आप 4 दिन खूब मौज मस्ती करते रहिए, मनाते रहिए, गलत करते रहिए, पर एक दिन तो वो कर्म का फल आपको खाना ही पड़ेगा, ये पक्का समझ लीजिए। अंगूर अनार सेब आप अपनी इच्छा से खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन कर्म का फल जो हमने बो दिया वो एक दिन खाना ही पड़ेगा। भले ही आप बुरा कर्म कर रहे हैं, आपको महसूस नहीं हो रहा, हम तो खूब खुशी में, पर ये सुनिश्चित है कि आपको उसका फल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा, फिर आपको रियलाइजेशन आएगा।
मन नहीं चाहता है पाप करने के लिए, लेकिन सिचुएशन ऐसे आ जाता है कि अपने आप पाप हो जाता है, लेकिन उसके बाद इमीडिएट आपको रियलाइज होता है वो क्या पाप मोक्ष होता है, नहीं वो रह जाता है।
क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हम नहीं चाहे और वो काम कर ले। असंभव शब्द कोई मानव की डिक्शनरी में नहीं।
भगवान की गीता में लिखा हुआ है कि रियलाइजेशन आ जाने के बाद पाप घट जाता है, लेकिन वो सच है या झूठे?
वो घट जाएगा जबकि आप सत्य बता दोगे, लेकिन भोगना तो पड़ेगा ज्यादा या कम। अगर सत्य किसी को सुना दोगे तो कम हो सकता है और पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको बुद्धि मिली है ना। पाप क्या है, पुण्य क्या है, उसकी परिभाषा तो आपको पता है ना, फिर वो अपने आप कैसे हो जाएगा? कर्म हाथ से हम जो करेंगे वही तो होगा ना। अगर कहेंगे डाउन तो डाउन, अप तो अप, तो बुद्धि भी हमारी कहती है कि बुरा कर्म है, पर हम उसकी बात को नहीं मानते और चंचल मन को मन के वश हो जाते हैं, फिर कर लेते हैं, फिर कहते हैं हम नहीं चाहते थे, हो गया,
बिल्कुल दीदी अब हम चलेंगे,
मजबूर हो जाते हैं, पर मजबूर नहीं होना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए।
तो ये है कि हर तरह का रोल अवेलेबल है।
हाँ।
अब मेरे ऊपर, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम हीरो बने, हीरोइन बने या फिर रावण बने, ये
हाँ,
हमारी मर्जी
ऊपर है।
बिल्कुल दीदी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बात करने का तो बहुत मन है लेकिन समय भी कम है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बिजी शेड्यूल से थोड़ा वक्त निकाले और यहाँ पर आके पहुंचे और हमारे ये मंच को चूज किया कि अपना अपना प्रश्न पूछने के लिए। शुक्रिया।